جو چیز جس کی شفا ہوگی وہ مرض ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ شفاء الایسوار. یہ مجھے تو وہ تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں انہوں میری کوئی حیثیت نہیں. اب یہاں سوال بہت سامنے ہے تو کسی کے ذہن میں شفاء الایسوار کی جہالت یعنی علم سے ناواقفیت جس کو کیا کہتے ہیں، یہ ایک مرض ہے، یہ مرض ہے. اب کیسے پتا ہوا مرض ہے؟ مرض اس لیے ہوا کہ اب اس سے اس کے لیے شفا کا لفظ استعمال ہوا. اس کے لیے کون سا لفظ ہو؟ شفا الائی سوا. یہاں جہالت کے لیے، ناواقفیت کے لیے، کم علمی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ شفا کا لفظ. تو معلوم ہوا شفا تو مرض سے ہوتا ہے، تو معلوم ہوا یہ مرض ہے. یہ تو اس اعتبار سے ہم سب مریض ہیں. یا کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ نہیں جی میں مریض نہیں ہوں، میرے پاس بہت بڑا علم ہے. یہ دعویٰ اس کو شاید ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو مریض نہیں ہوں، جہالت کا مرض میرے اندر نہیں ہے. تو یہ دعویٰ اگر کوئی کرے گا اس کے لیے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اکثر ہم میں سے یہ بات یعنی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ ہم لوگ مریض ہیں. جہاں بہت سے مرض ہیں وہاں ہم میں مرض جہالت بہت زیادہ ہے. جہالت یعنی ناواقفیت عن الحق، دین کے بارے میں، حق کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں ناواقفیت. اب اگر یہ بات ہم میں سمجھ میں آ گئی کہ ہم مریض ہیں اور یہ ہمارے اندر مرض ہے، اگر اس، اب آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ کینسر کی بیماری کا نام اکثر تو زبان زد ہے، اور یہ بھی عام لوگوں کو معلوم ہے کینسر بڑی مہلک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری. اب جہاں اس کے مہلک اور خطرناک جان لیوا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، وہاں اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مریض کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، بہت دیر تک اس کو اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا. اور جب احساس نہیں ہوتا ہے اس بیماری کا تو یہ بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے تباہی اور اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر جو جہالت کا مرض ہے، ہمارے اندر اگر ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تو یہ ہماری ہلاکت روحانیہ کا سبب ہو. جہاں کینسر ہلاکت جسمانیہ کا سبب بنتا ہے کہ اگر وقت پر اس کا احساس نہیں کیا گیا، اگر اس کا احساس وقت پر نہیں کیا گیا تو ہلاکت جسمانیہ کا سبب. اسی طرح سے جہالت جو ہے یہ مرض ایسا ہے کہ اگر انسان وقت پر اس کا احساس نہیں کرے گا تو یہ اس کی ہلاکت روحانیہ کا سبب بن جائے گا. تو اگر اس مرض کا احساس ہو گیا تو معلوم ہونا چاہیے نصف اس کا علاج مل گیا، نصف سے زیادہ. اگر اس تکلیف کا اب ایک شخص کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات اس کو اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کو باقی سارے دنیا کے جو تعلقات جو بھی چیزیں ہیں اپنا کاروبار ان سب کو بھول جائے گا. بھول جائے گا نہیں بھول جائے گا؟ سب سے وہ بے فکر ہو کر اب ایک ہی فکر اس پر طاری ہو جائے گی کہ مجھے یہ مہلک مرض لگا ہوا ہے, مجھے یہ مہلک مرض اور سب جتنی بھی اس کی تدبیریں ہیں اس کی اختیار میں, ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, کرے گا نہیں کرے گا. حتیٰ کہ اگر زمین بیچنا پڑے, مکان بیچنا پڑے, گھر میں کوئی چیز بیچنا پڑے, ایسا بھی کرے گا. کیوں؟ اب اس کو اس بیماری کا احساس ہو گیا کہ یہ میری ہلاکت کا سبب ہو جائے گی. تو اسی طرح سے بھی آئیں گی, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ طب جسمانی کے اصول اور طب روحانی کے اصول ایک جیسے, یعنی جو فزیکل میڈیسن جو آپ لوگ پڑھتے ہو اور جو اسپریچول میڈیسن جس کو آپ کہیں گے طب روحانی, اس کے اصول ایک جیسے. تو جہاں یہاں کینسر کا مرض اس جسم کو لگتا ہے تو اگر وہ احساس وقت پر نہیں کرے گا تو اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا, اور وہاں پر اگر جہالت کا مرض, ہم ایک مرض کو لیں گے, حضرت مفتی فرمائے تھے تکبر حسد, یہ سب مرض ہیں, تکبر حسد عجب جتنے بھی انہوں نے تذکرہ کیا. تو اسی طرح سے جہالت کا مرض, تو اگر ہم لوگوں کو معلوم یہ ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے تو جب وہاں سے اس بیماری کا احساس ہوتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے, سارے دوسری چیزوں سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے, ساری توجہ مرکوز اسی کی طرف کرتا ہے. تو کیا یہاں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ بتاؤ. یا تو یہ بتاؤ کہ ہمیں یہ مرض نہیں ہے, اگر بتائیں نہیں جی ہمارے اندر جہالت کا مرض ہے, تو اگر جہالت کا مرض ہے اس کا احساس ہے کہ نہیں ہے, اگر کہے گا ہے تو پھر کیا نیند اڑ گئی؟ کیا باقی تعلقات سے آپ بہن سے اپنا وقت جو ضائع ہوتا ہے اس سے آپ مڑ گئے کہ نہیں مڑ گئے, اور جہاں وہاں جتنی تدبیریں کرتے تھے اس مرض جسمانی یعنی کینسر کے علاج کے لیے, کیا اب اس مرض کے لیے بھی اتنا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خود موازنہ کرو. اور اسی کے لیے کہتے ہیں اس تخت قلب, اب اپنے دل سے فتوا پوچھو. اب مفتی صاحب تو گئے, اب بانی پور فون کرنا پڑے گا, اس سے پہلے اپنے دل سے آپ فتوا مانگو کہ یہاں پر ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے اور ایسا حال ہو جاتا ہے. اب یہاں بھی اور یہ تو اسے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے, جسمانی کینسر تو دنیا میں تکلیف ہوگی اور دنیا فانی ہے, یہ تکلیف بھی فانی ہے, اس کا تکلیف میں چلا جائے گا, لیکن انسان کی روح اور انسان کی روحانیات اور اس کی آخرت والی زندگی یہ تو فنا ہونے والی نہیں ہے, تو وہ تکلیف وہاں بھی اس کو ڈستے رہے گی, وہ سانپ اس کو وہاں بھی ڈستے رہیں گے, یہ جہالت کا مرض وہاں بھی اس کو. تو پہلے سب سے پہلے اب یہ جو فرمایا شفا اور آئی سوال, ذہن میں تو بالکل کچھ نہیں تھا, مفتی صاحب کی برکت سے یہاں سوال دیکھے تو یہ حدیث ذہن میں آئی. اب یہاں پہلا یہ مسئلہ, اس حدیث کا مفہوم تو الگ چیز ہے لیکن جو اس سے سبق نکلتے ہیں کہ جہالت ایک مرض ہے, جہالت ایک مرض ہے. اب ہمیں کیا اس مرض کا احساس ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں اس مرض کا احساس ہو جائے گا تو ہماری یہ حالت نہیں رہے گی. حق کو جاننا, دین کو جاننا, حق کو سمجھنا یہ ہر مومن کے لیے ہے, یہ صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں, یہ صرف مدرسے کے طالب علم کے لیے نہیں ہے. مدرسے کے طالب علم اب ایک خاص انداز سے ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہر مومن کے لیے اس مرض سے شفا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہر مومن کے لیے اس مرض سے چاہیے یا نہیں چاہیے, یا صرف مولوی صاحب کو اور مدرسے کے طالب علم کو؟ ہر ایک کو چاہیے. تو سب سے پہلے اس مرض کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں, اور ان مرضوں میں ایک और अगर इसको उम्मुल अमराज कहा जाए, इसको उम्मुल अमराज कहा जाए यानी हर मर्ज की जड़, तो बेजान होगा। एक शख्स ने हजरत हानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा था कि हजरत आप लोग कहते हैं अपना इलाज करना चाहिए, तजकिया करना चाहिए, अपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैंने अपने अंदर को देखा, मेरे अंदर कोई मर्ज नहीं है, मैं किस चीज का इलाज करूंगा, मेरे को कौन, मैंने देखा अपने पर अंदर, झांका मैंने तो कोई मर्ज मुझे नजर नहीं आया, तो अब मुझे क्या इलाज की जरूरत। अब ये सिर्फ कहते हो लोग इलाज करना चाहिए, तो हजरत ने लिखा कि ये इसको कहते हैं उम्मुल अमराज, कि पूरा मर्ज से भरा पड़ा है और मर्ज नजर भी नहीं आता, पूरे अमराज मौजूद है और भी नजर नहीं आता है, ये जो नजर नहीं आ रहा है ये तुम्हारा उम्मुल अमराज है। असल में वो एहसास बेदार होना चाहिए, और अरबी का एक मकोला है मन तलब वजद, मन और जिसने तलब किया समझ गयो, समझ जाओ कि उसने पाया। और एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो, क्या मन तलब, जिसने तलब किया तलब हकीकी, तलब साजक इखलास के साथ, तो समझो वजद पाया। अगर शेख सरहंदी अलैहि रहमत फरमाते हैं भाई तलब पैदा करो, अगर अल्लाह ताला को देना ना होता तो तुम्हें तलब ही ना पैदा करता, जो दिल में तलब आ गई है तो समझो वो देना चाहते, अगर देना ना चाहते तो तलब क्यों पैदा करते हैं? और तलब मकसूद है, तलब वसूल मकसूद नहीं। समझ गए क्या मकसूद है? तलब मकसूद है, वसूल मकसूद नहीं। क्यों? तलब इख्तियारी है, वसूल गैर इख्तियारी है। तलब इख्तियारी है, वसूल इख्तियारी नहीं, और गैर इख्तियारी का बंदा मुकल्लफ नहीं, गैर इख्तियारी का बंदा मुकल्लफ नहीं। शरीयत ने इख्तियारी चीजों का मुकल्लफ बनाया और तलब इख्तियारी है, और हमारे हजरत फरमाया करते थे, अब देखो बुजुर्गों के अल्फाज कैसे होते हैं, फरमाते थे कबूल मकसूद है, वसूल मकसूद नहीं। क्या फरमा दी? वसूल मकसूद, एक मर्ज की निशानदेही इंसान एहसास करे, मर्ज की, मर्ज का एहसास करे कि मैं मरीज हूं और ये मर्ज मेरे अंदर है, अब इस मर्ज का एहसास ऐसा होना चाहिए कि इसकी नींद उड़ जानी चाहिए, इसको इस मर्ज के, ये मर्ज चुभना चाहिए, इसके जिस्म को जो क्या कहते हैं उसको, मौला हमीदुल्लाह साहब ने अजीब शहर सुनाया, शायद प्रतापगढ़ी साहब का शहर है, पिछले जुमा में सुनाया था कि दर्द दिल मुस्तकिल हो गया, शायद अब मेरा दिल भी दिल हो गया, दर्द दिल मुस्तकिल हो गया। अब ये दर्द दिल क्या मुस्तकिल हो गया कि ये मैं मरीज हूं, मैं मरीज हूं, जहालत का मर्ज मेरे अंदर मौजूद है, अब इस मर्ज की वजह से अंदर दर्द हो रहा है, इस मर्ज की वजह से। अब अगर दर्द, अगर दिल जिंदा है तो दर्द को क्या करेगा, अगर महसूस नहीं करता तो दिल दिल नहीं है, शायद अब मेरा दिल भी दिल, तो क्या मतलब हुआ कि दिल जिंदा है एहसास करता है, अगर मर्ज है एहसास नहीं है तो दिल जिंदा नहीं है, अगर मर्ज तो मौजूद है, मर्ज के मौजूद होने में कोई दो राय नहीं, मर तो मौजूद है। अब एक शख्स एहसास करता है तो उसका दिल दिल है, और दूसरा शख्स मर्ज के होते हुए उसको एहसास नहीं करता उसका दिल। इसीलिए एक को अहले दिल कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते। एक को क्या कहेंगे कि अहले दिल में से है, अब इसके दिल में वो दर्द है। तो पहले ये इस कहते हैं वो कि उम्मत मुस्लिमा को वो डॉक्टर साहब का मशहूर शायर है, या रब दिले मुस्लिम को वह तमन्ना दे जो दिल को तड़पा दे रूह को। अब इस दिल में अगर कोई जिंदगी है तो अब ये फड़फड़ाना शुरू करेगा, अब ये धड़कना शुरू करेगा, अब इसको कोई फिक्र हो जाएगी, और जब फिक्र हो जाएगी अब तलब पैदा हो जाएगी। अब तलब पैदा हो गई, अगर जिसको प्यास लगती है पानी ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा, अब तलब होनी चाहिए सादिक। तो हमारे हजरत फरमाते थे देखो तलब सादिक की स्वीकृति। एक शख्स ने पानी मांगा फिर बातों में लग गया पानी भूल गया, तो इसको तो तलब थी लेकिन इसको तलब सादिक नहीं कहते। दूसरे शख्स को तब प्यास लगी, जब तक पानी नहीं पिया दूसरे सब काम मौकूफ कर दे, तो इसको तलब सादिक थी पानी। एक शख्स ने पानी मांगा तो फिर भूल गया, और एक शख्स ने जब तक पानी प्यास नहीं बुझाई तब तक वो दूसरे काम नहीं किए, तो कहा जाएगा कि इसको तलब सादिक है। क्या कहा जाएगा? इसको तलब सादिक है। तो इसलिए सबसे पहले इस तलब को पैदा करना है, और इंसान को शैतान क्या समझाता है, तुझे वसूल नहीं है, तुझे वसूल इसलिए तुम मर्दूद हो और तुम काम छोड़ दो। हालांकि वसूल मकसूद नहीं है, कबूल मकसूद है और तलब मकसूद है कि बंदा सिद्ध के दिल से तालिब रहे, और जो तलब करता है और उसके असबाब भी इख्तियार करे। अब खाली दिल में तलब रखता है और उसके असबाब इख्तियार नहीं करता तो इसको तमन्ना कहेंगे, इसको तलब सादिक नहीं कहेंगे। पता नहीं मेरी बात समझते हो है? वो यहां जम्मू वाली गर्मी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है। एक तमन्ना, मेरी तमन्ना कि दिल में मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, उसको तमन्ना कहेंगे। और एक ये है कि जो तलब है अब उसके जो जरूरी असबाब हैं उनको इख्तियार भी करता है, उनको इख्तियार भी करता है। यहां मर्ज क्या है? नावाकफियत है, मर्ज यहां नावाकफियत है, जहालत है, जहालत है, ये मर्ज है। अब इसका इलाज क्या होगा? इल्म को हासिल करना कि नहीं, और इल्म हासिल करने के जो मुख्तलिफ जराया हैं उन जराया को इख्तियार भी करेगा कि खाली करेगा अल्लाह मुझे आलिम बना दे, अल्लाह मुझे आलिम बना दे, रबी जिदनी इल्मा, रबी जिदनी इल्मा, रबी जिदनी इल्मा। दुआ तो सही है, दुआ मांगेगा तो इसको इख्तियारी जो असबाब हैं, और कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता है तो क्या किसी कारी साहब के पास जाएगा भी, बजाना हुए तलामी साहब बैठेगा भी, कारी साहब मित्र मेरा कुरान तो सही करो, ऐसा करेगा? दरसगाह में आ जाएगा, इतने कदम तो चलेगा, या खाली कहेगा कि मेरा कुरान सही हो, मेरा कुरान सही हो, मेरा कुरान सही हो, इसे कुरान सही हो जाएगा? यानी कायदा बढ़ेगा, और कायदा किसी के पास पड़ेगा, ये चीज खुद पढ़ी नहीं जा सकती। राजस्थानी लहराम ने एक वाक्य लिखा है कि एक साहब आए कि भाई के है, क्या कहते उस्ताद उसका चाहिए, मैं खुद पढ़ूंगा, जरा दिखाऊ मोली साहब दिखा। अब वहां अलिफ लाम रहा था, वो पढ़ा आमी। अब खुद बताओ अगर किसी के पास पढ़ेगा नहीं अलिफ लाम रा कुरान में, तो इसको इस तरह से पढ़ना है तो आलू नहीं पढ़ेगा, अलड़ पढ़ेगा। अगर सुना नहीं, किसी से सीखा नहीं, अलिफ लाम रा तो कभी नहीं पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ेगा, अलम पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो मालूम हुआ कि इसको किसी के पास जाना है, तो अगर ये किसी के पास जाता है तो मालूम हुआ कि इसको इसकी तलब सादिक है, और अगर नहीं जाना, दिल में तो तलब है, अब नहीं जाता है तो इसमें तकबुर है। अब ये तकबुर आड़ बन रही है इसको, ये रुकावट बन रही है इसको, ऐसी नियामत अजीमा से इसको दूर रख रही है। क्यों? शागिर्दी कौन इख्तियार करेगा? जिसमें तवाज़ो हो, जिसमें नरमी हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स ने सवाल पूछा, कहा फरमा हजरत बताइए कुत्ता कब बालिग होता है? इमाम साहब से मतलब पूछा, इमाम साहब ने कहा मुझे मालूम नहीं है। अब इमाम अबू हनीफा का इल्म कितना था माशा तो मालूम नहीं है, लेकिन इल्म की तलब तो थी। अका किसे पता चलेगा? कहा बंगी से पता चलेगा जो कुत्तों के साथ। अब एक बंगी उसे पूछा, भाई तुम बताओ ये कुत्ता कब बालिग होता? तो उसने कहा जब टांग को खड़ा करके कुत्ता पेशाब करता है तो ये उसके गुलूगियत की निशानी है। तो लिखा है किताबों में कि पूरी जिंदगी भर हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह उस बंगी का उस्ताद जैसा कदर करते थे। जब भी रास्ते में देखते थे तो हजरत एक तरफ को होते थे, मेरे उस्ताद जा रहे हैं। अब ये जो ये इनके साथ ऐसा मामला करते थे, क्यों करते थे? क्यों करते थे? एक इल्म की कदर मालूम थी और हजरत में तकबुर रायदाना बन रुकता, मैं पूरे दुनिया में बड़ा आलिम, एक बंगी है तो क्या हुआ, उसकी कदर करता? कभी नहीं करता। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार देवबंद में पढ़ा रहे हैं और पढ़ते हैं तो बीच में खड़ा हो जाते, फिर बैठ जाते, दोहराए यानी असनाए दस, कभी खड़ा कभी बैठ कभी। अब किसी ने पूछा हजरत ये खड़ा है मामूल क्या फर्क? आज कहा मेरे उस्ताद का बच्चा वहां खेल रहा है, फुटबॉल खेलता है, और कभी वो मेरे नजरों के सामने आता है तो उसके एहतराम में खड़ा होता हूं, उसके एहतराम में खड़ा होता हूं, और फिर वो जब नजरों से ओझल होता है खेलते खेलते उधर, फिर मैं बैठ जाता हूं, फिर जब नजरों के सामने आता हूं फिर खड़ा होता हूं। तब अल्लाह ने वो इल्म दिया था अगर अल्लामा अनवर शाह साहब को कि शायद ही इल्मे हदीस में पिछले 300-400 साल में किसी को अल्लाह ने दिया है पूरी दुनिया में। जब इल्म और जराए इल्म की ये कदर, इल्म और जराए इल्म की, अब जहालत का इलाज क्या है? इल्म हासिल करना। तो इल्म हासिल हो जाएगा जब जराए इल्म की भी कदर आ जाएगी। जब जराए, पहले हमारे असलाफ ऐसे गुजरे हैं कि अगर यानी जो स्याही जो पेन में स्याही होती है ये इल्म का जरिया है, हा? जिसे हम लिखते हैं, अगर वो उंगली पर लगी होती तो बैतुल खला में नहीं जाते कि जरिया इल्म है इसकी बेकदरी हो जाए। अल्लाह ऐसे नहीं देते, देखते हैं बर्तन कैसा है, समझ गए? यानी पहले वो आदाब पैदा करने हैं जो हसूल इल्म के लिए लाजमी है। हमें तो उस्ताद की कदर नहीं तो किताब की क्या कदर होगी? और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ये है, खुद फरमाते हैं कि किताब के हाशिया को पढ़ने के लिए कभी मैंने किताब को नहीं मोड़ा है। आपने शायद घर से किताबें नहीं देखी हैं, वहां ऐसे लिखा होता है, फिर यहां किनारे पर हाशिया में इस तरह से लिखा होता है, अगर इसको पढ़ना है तो किताब को यूं मोड़ना पड़ेगा, फिर ये पढ़ेंगे, तो अगर ये पढ़ना है तो किताब को यूं, अगर यहां से हाशिया लिखा तो, अब यहां से किताब हाशिया पढ़े खुद उठते थे और यहां बैठते थे हाशिया पढ़ते, क्यों? ये किताब मुझसे अफजल है, मैं इसका मोहताज हूं, इसकी ताजी मुझ पर लाजिम है, मुझे फायदा इससे हो रहा है। फरमाते हैं किताब के हाशिया को देखने के लिए मुझे याद नहीं मैंने कभी किताब को मोड़ा हो। अब हम आएंगे किताब पढ़ी तो ऐसे फेंक देंगे उसको, कलम को फेंक देंगे, कागज को फेंक देंगे। और अगर रहमतुल्लाह साहब कहते हैं कि अगर बस में इंजन पर बैठना पड़ा और इंजन गर्म है तो बस नीचे लगा दी, उस पर गड़ गया। अब इल्म कहां से आएगा, इल्म कहां से आएगा? एक इस चीज का एहसास कि जहालत क्या है, मर्ज है। अब इस मर्ज का इलाज चाहिए, अब इस मर्ज का इलाज इल्म हासिल करना है। अब वो इल्म कैसे हासिल होता है? ऐसे वैसे नहीं हासिल होता है। अब हमारे हजरत अलैहिर्रहमत जब अफ्रीका गए थे तो कागज उठाने वाले के नाम से मशहूर हुए थे। जहां कोई कागज को टुकड़ा देखा तो उसको उठाकर ताजिम की जगह रखते थे। क्यों? जरिए इल्म है। क्या है जरिए? अब हमने इन किताबों की, इन ज़राया की क्या की? नाकदरी की। और हमें इल्म भी क्या हासिल है? हमने इनकी नाकदरी की, हमें हासिल भी क्या? जिन्होंने इन चीजों की कदर की, जिन्होंने इन चीजों की कदर की, उनको अल्लाह ताला ने नवाजा। ये शायद मेरी बातें आपको लगती होंगी दिखियानों सी, पता नहीं क्या बोलता है, लेकिन ये हकीकतें। और जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा इस चीज से, उनको वो चीज हासिल हो गई, इल्म का वो नूर हासिल हो गया। इल्म असल में नूर है, इल्म असल में नूर इलाही है। ये खाली ये क्या कहते हैं उसको, यानी ये खाली लफाज ही नहीं है, अल्फाज लिखने पढ़ने का नाम इल्म नहीं है। इल्म असल में नूर है। अल इल्म नूर में नूर इलाही लायू तलिल आसी, हजरत इमाम शाफई का मशहूर ये है, इमाम वकी का, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग नए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार अपने उस्ताद इमाम वकी से सवाल किया, कहा हजरत मेरा हाफिजा ठीक नहीं है, दुआ कीजिए। ये मशहूर है इमाम शाफी का रहमतुल्लाह अलैह, शकौतु इला वकी सुइल हिफ्जी फावसानी इला तर्किल मआसी। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरा हाफिजा, अब वहां से जवाब क्या आ रहा है? जवाब आता है गुनाह को छोड़ दो। अब सवाल क्या है? बजाय कोई रबत नजर नहीं आता, बजाय इनमें रबत नजर नहीं आता। शकौ तिला वकी सुल हिफी फाउसानी इला तरकिल मासी फाइन इल्म नूर में नूर इलाही ला यूता लिलास। क्यों? ये इल्म है, अल्लाह का एक नूर है, ये गुनाहगार को नहीं दिया जाता। अगर कुवत हाफिजा चाहते हो, इल्म चाहते हो, तो पहला काम यह करना पड़ेगा कि गुनाहों को तरक कर दो। हर एक के लिए यही है, हमारे लिए यही है कि अगर इल्म हासिल करना है तो तर्क माशी पहली शर्त है, किताब को उठाना उसके बाद का स्टेप है, कदम है। पहला कदम तर्क माशी है, इन्हें गुनाहों को तरक करना है, ताकि इस इल्म का जो बर्तन है, कल्ब है, ये कल्ब पाक हो जाए, साफ हो जाए, जिसमें ये इल्म का दूध डाला जाएगा। खाब में इल्म की जो मिसाल दी गई है वो दूध की है, कि अगर कोई खाब में दूध पीता देखता है तो उससे इल्म ताबीर होती है। तो दूध किस बर्तन में डाला जाएगा? जो साफ होगा, कि गंदे बर्तन में डाला है। तो अब एक शख्स दिन भर कानों से, आंखों से, जबान से गंदगी डालता रहा, गंदगी डालता रहा, और इधर से बुखारी शरीफ भी पढ़ता है, इधर से कुरान शरीफ भी पढ़ता है, इधर से कहता है मैं बड़ी तफसीरें पढ़ता हूं, बड़े बड़े फलसफियों की किताबें मैंने पढ़ी। तो फलसफियों की किताबें तुमने पढ़ी हैं, लेकिन तुम्हारे इस कल्ब में वो नूर नहीं जाने वाला। तू तो इसको दिन भर सियाह करता रहता है, दिन भर क्या करता रहता है? तो पहला पहला काम एहसास मर्ज, पहला काम एहसास मर्ज। اور اس کے بعد اس کا جو علاج ہے علم کو حاصل کرنا، اب اس کی فکر کرنا، اب اس کے لیے ذرائع علم جو ہیں ان کی قدر کرنا، تعظیم کرنا، اور اسی میں درگاہ بھی آتی ہے، مدرسہ بھی آتا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں. یہاں کی ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ قابل عظمت تعظیم ہوتی ہے کہ یہ علم کا ذریعہ ہے. تو اگر اب اس کو شوق ہو گیا تو یہ قاری صاحب کے پاس بھی جائے کہ خدا را کسی طرح کے اس وقت نکال کر میرا قرآن تو صحیح کرو، اور کسی عالم کے پاس جائے گا ذرا میرے عقائد تو سنو، میرے عقیدے یہ ہیں، کیا یہ صحیح ہیں، اور پھر وہ اس کو تجویز کرتا چلا جائے گا کہ یہ کتاب پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو آہستہ 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 اس کو اس میں یہ طلب جو ہے منزل کی طرف اس کو رواں دواں کرے گی. لیکن پہلے طلب پیدا کرنی چاہیے. تو اگر طلب ہی نہیں ہے اور یہی طلب مقصود ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کو اس کی فکر نہیں، اس کو یہ سوال نہیں کیا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ وصول قبول نہیں، یعنی وصول مقصود نہیں ہے، مقصود قبول ہے. اور قبولیت ہوتی ہے، قبولیت کا مدار اخلاص پر ہے. اخلاص کے ساتھ طلب کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے، تو ضرور اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی اور وہی مقصود ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی علم دین کی محبت طلب صادق پیدا کرے، اور ہمارے لیے آسان کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی اس نعمت عظیمہ کا وافر حصہ نصیب کرے. وآخر دعوانا. بولنے کا کچھ نہیں تھا، بس ایسے آ جائے.